कमरे में मौजूद ईशान उस दिन भी रोज की तरह जमीन पर ही सोया था। जब से कशिश उसकी जिंदगी, उसके घर और उसके कमरे में आई थी, उसने अपना पलंग त्याग दिया था। कशिश उस पर पूरे हक से सोती थी और आज जब वो नहीं थी तब भी उस पलंग को उसी का इंतजार था। डोडो और बाकी टेडी सुस्त पड़े कशिश को याद कर रहे थे। उसकी याद तो उनके साथ साथ किसी और को भी खूब सता रही थी। अपने बिस्तर पर लेटा ईशान ना चाहते हुए भी कशिश को ही याद कर रहा था। जाने से पहले जिस तरह से कशिश ने उसे देखा था, ऐसा लगा मानो उसके दिल का सुकून, करार सब अपने साथ ही ले गई और जाते जाते उसके मन को बेचैनी से भर गई। हाँ, बेचैन था वो। कशिश की सुरमई भीगी आंखें उसके दिल का करार लूट गई थी। बार बार वो भीगी आंखें उसे शिकायत करती और ईशान बेचैनी से पहलू बदलता, पर वो ख्याल सहन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस कमरे में पसरा सन्नाटा जैसे उसे काट खाने को दौड़ रहा था। अभी उसे गए कुछ घंटे भी नहीं हुए थे और जिंदगी जैसे वीरान सी लगने लगी थी। हवाओं में घुली शुष्कता उसे शिद्दत से उसकी गैर मौजूदगी का एहसास करवा रही थी। कितनी खफा थी वो उससे कि जाने से पहले उससे बात भी नहीं की, नज़र भर देखना तक गवारा न समझा और मुंह फेर कर यूं गई मानो उसके घर के साथ साथ उसकी जिंदगी से भी सदा के लिए अलविदा कह दिया था। ईशान व्याकुल था, बेचैन था। दिल की कैफियत मुंठों पर नहीं आ रही थी और आंखों से नींद नदारद थी। ईशान की रात आंखों ही आंखों में कटी। लम्हे भर को भी बेचैन दिल को करार न आया। कशिश का ख्याल सारी रात दिलो दिमाग पर सवार रहा। दूसरी तरफ कशिश भी बेचैन थी और उसकी बेचैनी का आलम कुछ इस प्रकार था कि कुंभकर्ण की नींद लेने वाली कशिश आज सूनी निगाहों से सीलिंग को घूर रही थी। जाने से पहले ईशान से हुई बातें, ईशान के दिए जवाब उसके कानों में गूंज रहे थे। 100 दफा समझा चुकी थी खुद को, पर सब बेअसर था। कमबख्त बिन बुलाए मेहमान जैसे इश्क का रोग उसकी जिंदगी में आ घुसा और अब कालियानाग जैसे फन फैलाए बैठा था। कौन कहता है इश्क में करार होता है? दीवानों के हिस्से तो बेकरारी ही आती है। ईशान से उम्मीदें नहीं रखना चाहती थी वो। खुद का सामना 1000 दफा उनके रिश्ते की हकीकत से करवा चुकी थी। कितनी ही बार खुद को समझाया था कि ये एहसास एक तरफा है, ईशान के मन में ऐसा कुछ नहीं और ना ही कभी हो सकता है। उसने खुद को अतीत की जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया था जिससे वो चाहकर भी उसे आज़ाद नहीं करवा सकती थी, पर ढीठ दिल कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं था। शिद्दत से याद कर रही थी वो उस संगदिल शख्स को जिसे उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। कितनी दफ़ा उसकी पलकें भीगी थी और कितनी दफ़ा दिल टूट कर बिखरा था, पर सुबह होते ही उसने खुद को समेट लिया था। अलग माहौल में कशिश भी असहज सी रही, पर जल्दी ही सहज हो गई। रात भर नींद नहीं आई थी, पर सुबह जल्दी उठने की आदत थी, सो नहा धोकर तैयार होकर किचन में पहुंच गई। माधुरी जी ने मना भी किया था, पर खाली बैठे मन नहीं लग रहा कहकर उनकी मदद करने लगी। पर रह रहकर ईशान का ख्याल मन को भटका जाता था। नाराज होकर आई थी, पर उसकी चिंता में घुली जा रही थी। फिर खुद को फटकार लगाई कि वो कोई बच्चा नहीं, अपना ख्याल खुद रख लेगा। वैसे भी उसके जाने के बाद तो उसे खुद ही सब संभालना था। ये ख्याल मन में आया और दिल में तेज दर्द उठा, पलकें भीग गईं, होंठों पर मुस्कान सजाई और मन बहलाने लगी। जबकि दूसरी तरफ ईशान अपनी कश्मकश में उलझा हुआ था। जब बिस्तर छोड़कर उठा तो आदतन कशिश की तलाश में भटकती निगाहें पलंग की ओर घूम गई, पर आज उन भटकती निगाहों को ठहराव न मिला। पलंग खाली था और कमरे में मरघट सा सन्नाटा पसरा था। न चूड़ियों की खनखनाहट फिजाओं में घुली थी, न पायलों की छमछम ने हवाओं को मधुर संगीत सुनाया था, न वो खनकती आवाज़ वहां गूंजी थी और ना वो नूरानी चेहरा उसे नजर आया था। उफ खुदाया, कैसा सन्नाटा पसरा था यहाँ। ईशान का जी जला और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। नीचे आया तो उस दिन भी सब साथ में ही नाश्ते पर बैठे थे, पर उन लोगों की भीड़ में वो नहीं थी जिसका इंतजार उसकी बेचैन निगाहों को था। उस दिन कोई उसके खाने पर तंज नहीं कस रहा था, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था। उस दिन वो चूड़ियों से भरे हाथ नहीं आए थे उसका टिफिन लेकर। बेजार हो गया था वो और शिद्दत से उसकी कमी का एहसास हुआ था उसे। दिल ऐसा उचाट हुआ कि कुछ निवाले खाकर खाने पर से उठकर दुकान के लिए निकल गया। सब खामोशी से उसे देखते ही रह गए। कशिश का दिन पहाड़ सा बीता था। कभी माधुरी जी और शिखा से बात करती तो कभी शिखा की कोई किताब लेकर पढ़ने लगती, कभी बिस्तर पर पड़ जाती तो कभी खामोशी से मोबाइल को यूं तकती मानो बस अभी बच उठेगा। पर यहाँ भी उसकी उम्मीद टूटी थी। ईशान का ना कोई फोन आया था और ना ही कोई मैसेज, जैसे उसके वहां आने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। गुस्से में कशिश ने फोन पटका और छत पर टहलने चली गई। दुकान पर काफ़ी काम था जिसमें ईशान को ज़्यादा वक्त नहीं मिला था, पर मन रह रहकर उन गलियों में भटक जाता जहाँ के सभी रास्ते उसने अपने हाथों से बंद किए थे। कशिश का ख्याल मन से जा ही नहीं रहा था। कई बार दिल के हाथों मजबूर होकर फ़ोन उठाया था, पर कमबख्त दिमाग ने ऐन वक्त पर कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया था। दुकान बंद करके घर जाने की जगह खाट चलाया। वहां कदम रखते ही कशिश के साथ वहां बिताए पल उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की भांति घूम गए। दिल की धड़कनें बढ़ीं और मन बेकरार हो उठा। उल्टे पैर वापस लौट गया। घर पर सब थे, पर फिर भी एकदम सूना लग रहा था, मानो अपने साथ घर की रौनक भी ले गई थी। कहीं मन लग नहीं रहा था, सो कुणाल के साथ मन बहलाया। कमरे के बजाय देर रात तक छत पर रहा, और जब थकान नींद बनकर उसके दिमाग पर हावी होने लगी तो कमरे में चला आया। कल की जागी कशिश उस दिन उस तन्हाई से बचते बचाते शिखा के कमरे में पहुंची और देर रात तक बातें करते हुए सो गई। देखते ही देखते एक हफ्ता यानी 7 दिन बीत गए। देखने वालों के लिए बस एक हफ्ता था, पर कोई उन दो दिलों से पूछे जो एक दूसरे से दूर एक दूसरे के वास्ते तड़प रहे थे कि कैसे इस हफ्ते का एक एक पल सदियों जैसा बीता था उनके लिए। चंद कदमों की दूरी पर थे, पर लगता जैसे मीलों दूर हो। दिल एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, कान आवाज सुनने को बेताब थे और आंखें तरस गई थी एक दूसरे के दीदार को। इन दिनों ना तो उनकी कोई बात हुई थी और ना ही मुलाकात। ईशान अपने अनकहे एहसासों में उलझा हुआ था। कशिश के बिना एक पल को भी करार नहीं था उसे, पर फिर भी उसने कशिश से बात करने में कोई तत्परता या दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, और कशिश तो उससे खफा थी, सो अपनी दिली कैफियत को छुपाए ऊपर से कठोर बनी हुई थी। हालांकि वहां उसे काफी अच्छा लगा था। अरविंद जी से पिता का प्यार मिला था, तो माधुरी जी बिल्कुल माँ जैसे उसका ख्याल रखती थीं। शिखा में एक बहन के साथ दोस्त भी मिली थी, दोनों की खूब पटती थी और घर में भी उनसे खूब रौनक रहती थी। अभिषेक से भी उसकी बातचीत हो जाती थी। बहुत ही शांत, सुलझा हुआ और समझदार इंसान था वो। कशिश को शिखा जैसे ही चाहता था। वहां कशिश के आने से खूब रौनक लगी थी। वहीं मिश्रा निवास में उसके चले जाने से सन्नाटा पसर गया था, और उसकी कमी सबको तब और खलने लगी जब आगंतुक अपने घर को लौट गए थे। जाने से पहले सब कशिश से मिलने भी आए थे। दिनेश और उसकी अच्छी खासी बातचीत भी हुई थी। ईशान उस दिन भी रोज की तरह जल्दी जल्दी तैयार होकर कमरे से बाहर निकला, मानो पीछा छुड़ा रहा हो। ऐसा ही करता था वो, जल्दी चला जाता और देर रात कमरे में कदम रखता, मानो यहाँ आने से उसे गुरेज हो। खैर, यहाँ आकर कशिश की याद शिद्दत से सताती थी उसे। शायद उन्हीं यादों से दूर भाग रहा था, या शायद उन एहसासों को छुटलाने की कोशिश कर रहा था जो कशिश को लेकर वो महसूस करने लगा था।
ईशान तैयार होकर नीचे पहुंचा और सीधे बाहर निकलने लगा, पर पीछे से रजनी ने उसे टोक दिया। ईशु, रुको, नाश्ता करके जाओ। भूख नहीं है दीदी, ईशान ने पलटते हुए कहा, जैसे टालने की कोशिश में हो। रजनी ने हाथ कमर पर बांधते हुए उसे घूरा और आंखों से बैठने का इशारा किया। बेचारा ईशान मजबूरी में मन मारते हुए जाकर बैठ गया। सब खाने को बैठे और बार बार उनकी नज़र रजनी पर जाती, जैसे उसे कुछ कहना चाह रहे हों। रजनी ने अपनी पलकें झपकाई और ईशान का रुख किया। ईशु, कशिश को लेने कब जाएगा? अब तो उसे गए एक हफ्ता हो गया है। चला जाऊंगा दीदी, इतनी जल्दी क्या है, कुछ दिन और उसे वहां सबके साथ गुजारने दीजिए। ईशान ने खाते हुए यूं बेफिक्री से जवाब दिया जैसे कशिश के होने ना होने से उसे कुछ खास फर्क ही ना पड़ा हो और उसे उसको वापस लाने की कोई जल्दबाजी ही नहीं हो। उसका जवाब सुनकर सब परेशान निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। रजनी ने अब की बार जरा सख्त लहजा इख्तियार किया। ईशान, कशिश को गए अब बहुत दिन हो गए हैं, तो बेहतर होगा कि आज वक्त निकालकर तुम उसे ले आओ। ईशान नजरें कुछ पल उसे तकता रहा, फिर सर हिलाते हुए वापस नाश्ता करने लगा। ईशु, तुम्हें कशिश की कमी नहीं खली इन दिनों, जो उसे वापस लाने में इतनी कोताही बरत रहे हो तुम, जैसे उसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं? ये सवाल कशिश को लाने के प्रति ईशान का बेपरवाह रवैया देखकर रजनी ने किया था ईशान से, जब वो उसे टिफिन देने आई थी। ऐसी बात नहीं है दीदी, बीते महीनों में पहली बार वो वहां गई है, बस इसलिए मैं चाहता था कि वो कुछ दिन वहां सुकून से गुजारे, ईशान ने सफाई पेश की। उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद भी रजनी के चेहरे के भाव जस के तस बने रहे। ईशु, एक बात का जवाब सच सच दोगे? रजनी के चेहरे के गंभीर भाव देखकर ईशान के माथे पर बल पड़ गए। कैसा सवाल दीदी, क्या माँ ने जो पापा के साथ किया उसके कारण तुम कशिश को पूरी तरह से अपनाने से कतरा रहे हो? तुम्हारे मन में कहीं ये शंका तो नहीं कि कशिश भी तुम्हारे साथ वही करेगी, इसलिए तुम अपने और उसके बीच दूरियां बनाकर रखते हो ताकि कल को अगर वो चली जाए तो तुम्हें कुछ खास फर्क ना पड़े? आगे क्या जवाब देगा ईशान इस सवाल का? क्या अपने दिल का डर बयां करेगा या अंदर ही अंदर कुड़ता रहेगा?